ओम शांति। अभी का जो सेशन है ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट और ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं डॉक्टर प्रेम मसंत।
ओम शांति। गुड इवनिंग आप सभी को, ग्रीटिंग्स ऑफ लव एंड पीस। आज हम सभी जानते हैं कि ये 21st सेंचुरी इज अ सेंचुरी ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेन सिचुएशंस में हम अपने को कैसे कोप अप करें, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, जिससे कि उस सिचुएशन में मैं अपने को अच्छी तरह से फेस कर सकूं। ज्यादातर हम सभी जानते हैं जब हमें ट्रेनिंग दी जाती है, सिम्युलेटेड वॉर टेक्निक्स दी जाती है, उसमें भी जो मेन एम एंड ऑब्जेक्ट रहता है कि हम अपने को उन सिचुएशंस में कैसे ठीक रखेंगे, सर्वाइव करेंगे, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि जब प्रॉपर सिचुएशन आए, एक्चुअल सिचुएशन आए, मेरा बॉडी का रिफ्लेक्सेस, डिसीशन पावर एक्यूरेट काम करे। क्योंकि अभी इस सेंचुरी में कोई फिक्स टेक्निक्स नहीं है। पहले फिक्स टेक्निक थी क्योंकि हमें मालूम था कुछ सिचुएशन इस तरीके की मेरे लाइफ में आएगी, तो हम बच्चों को, एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को ट्रेनिंग देते थे। पर अब धीरे धीरे जैसे समाज में चेंज आया है, इन चेंजिंग सिनेरियो में अभी कुछ कोई नहीं कह सकता किसको क्या हो जाए। अभी 12 बजे ही एक व्यक्ति नीचे शिविर करने मुलुंड से आया है और उसको सडनली चेस्ट पेन चालू हुआ और ग्लोबल में एडमिट किया। अब अनसर्टेन सिचुएशन कब, कहां, क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। इसीलिए इस अनसर्टेन मैच में मैं अपने को कैसे स्ट्रांग रखूं, तो थोड़ा मैं साइकोलॉजिकल टेक्निक्स दूंगा। बेसिक में ये चाहता हूं कि अगर बेसिक फिजियोलॉजी और एनाटॉमी क्लियर हो जाए तो देन यू कैन मैनेज योर ओन प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे। क्योंकि आज 21st सेंचुरी में चाहिए लोग ऐसे जो इम्पावर्ड हो, इंटरेस्टेड हो, इंथुजियाटिक हो, एनर्जेटिक हो। हर दिन हमें अपने में एनर्जी पैदा करना पड़ता और वही यहाँ आप आकर ब्रह्म कुमारी इसमें सीख रहे हैं कि रोज मैं अपने को कैसे चार्ज करूं। क्योंकि मैं प्लानिंग तो कर रहा हूं आज के दिन की, वर्क प्लेस की, घर की, फ्यूचर की, पर हम सभी जानते हैं कि प्लानिंग के बाद भी हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, हम उसमें हार खा जाते हैं। और मैच ये जीवन का एक सेकंड का ही होता है जिसमें व्यक्ति मैच हारता है। जो हमारे अंदर इमोशंस हैं, साइकी है, अगर हमने उसको ठीक नहीं किया तो जब सिचुएशन आती, जो मेरे अंदर प्रॉब्लम्स पड़े हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पड़े हुए हैं, उस समय एकदम में रिएक्ट कर दे। इसीलिए एक व्यक्ति ने कहा, लाइफ इज 10% व्हाट एक्चुअली हैपन टू अस, 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। लाइफ में 10% कुछ हर व्यक्ति को अपने जीवन में होता है, चाहे मैं भी हूं, हम सब भी यहां हैं, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ होगा ही, ये आज हम मान के चलते हैं 10%। पर 90% क्या है? हाउ वी रिएक्ट टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। और ये देखा गया, हम सभी भारतीयों में, इंडियंस में एक अपना कल्चर है, एक अपने इमोशंस हैं, एक अपनी फीलिंग्स हैं। हम लोगों का रेस दुनिया के दूसरे रेसेस से थोड़ा अलग है क्योंकि हम सब फैमिली बाउंड पीपल हैं, तो हमारे अंदर के इमोशंस अपने तरीके के रहते हैं। तो ज्यादातर ये देखा गया, हम सभी के प्रॉब्लम जो रोज हमारे दिन में होते हैं, अगर हम उनको ओवर रिएक्ट करते हैं, सीरियसली ले लेते हैं, तब प्रॉब्लम चालू होता है। एक्यूट स्ट्रेस प्रॉब्लम नहीं देती, व्यक्ति एक्यूट स्ट्रेस को तो ज्यादातर टॉलरेट कर लेता है। पर ज्यादातर ये देखा गया जो रोज मेरे घर में वर्क प्लेस पे छोटे छोटे प्रॉब्लम आ रहे हैं, स्टेशन पे ट्रेवलिंग में, उनको मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, उनको कैसे हैंडल कर रहा हूँ। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार ट्रेन में आ रहे थे और व्यक्ति बहुत बड़ा एसी कोच में चढ़ रहा है। अब एसी कोच में चढ़ रहा है इसका मतलब उसके पास पैसा है। कूली ने कुछ पैसे ज्यादा मांग लिए, शायद जो भी उनका बार्गेन हुआ होगा, 5 रुपए 10 रुपए। तो वो व्यक्ति चालू हो गया, रिएक्ट करना चालू हो गया, डायलॉग चलता गया, डिस्कशन चलता गया, ये और गर्म होता गया। क्या तूने मुझे बुद्धू समझा है, मूर्ख समझा है? धीरे धीरे उसको सडनली शॉक हुआ, वहीं गिर। अब उस 10 रुपए के बचाने के चक्कर में डॉक्टर को 2 लाख रुपए बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी की देनी पड़ेगी। यही छोटी छोटी सिचुएशन जो हमारे जिंदगी में आती है उनको हमें मैनेज करना है। एक बहुत अच्छा कोटेशन है, एक व्यक्ति ने कहा, हाफ ऑफ द लाइफ वी स्पेंड अवर हेल्थ टू अर्न वेल्थ एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ वी स्पेंड हेल्थ वेल्थ टू स्पेंड टू गेन अवर हेल्थ। आधी जिंदगी हम अपना हेल्थ को भूल के पैसा कमाते हैं और नेक्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ हम उसी पैसे को अपनी हेल्थ को वापस लेने के लिए मेहनत करते हैं। तो क्यों नहीं हम अपनी जिंदगी को शुरू से ऐसा अच्छा करके चलें कि जिससे मेरे मेडिकल बिल्स कम हो जाएं और लाइफ को मैं एंजॉय कर सकूं। एक बहुत अच्छी रियल वर्शन कन्फ्यूशियस की स्टोरी से चालू करता हूं। कन्फ्यूशियस एक चाइनीज फिलोसोफर था, बहुत जीनियस फेलो था। एक जब वो अपने लाइफ के लास्ट टाइम में था, जिंदगी के अंतिम क्षणों में था, बेड पर था, उसके आसपास उसके सभी फैमिली मेंबर्स खड़े हुए थे। सडनली फिलोसोफर ने पूछा एक व्यक्ति से, व्हाट इज देयर इन माय माउथ, मेरे मुंह में क्या है? व्यक्ति ने कहा टंग। फिलोसोफर ने कहा, व्हाट इज देयर इन योर माउथ, तेरे मुंह में क्या है? तो व्यक्ति ने कहा, टंग एंड टीथ बोथ। फिलोसोफर ने कहा, देखो जब हम पैदा होते हैं टंग पहले आती है और दांत बाद में आते हैं, पर हम जब इस जिंदगी को छोड़ते हैं दांत पहले गायब हो जाते हैं, टंग रह जाती है। मेरा मैसेज तुम्हारे को यही है, इफ यू वॉन्ट टू लिव ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्दी लाइफ, Be soft, gentle, flexible, like tongue. पर आज 21वीं सदी में मैं ये कहूंगा, टंग जैसा फ्लेक्सिबल तो होना ही है, पर अंदर माइंड में मुझे टफ भी बनना है, स्ट्रांग भी बनना है। माइंड में टफ होऊंगा, बाहर फ्लेक्सिबल होऊंगा, तभी मैं जीवन को अच्छी तरह से फेस कर सकूंगा। तो आज के चेंजिंग सिनेरियो में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें वो लोग चाहिए जो ऑटोनॉमस हो, जिनका टीम मैनेजमेंट अच्छा हो, सेल्फ रिलायंट पीपल हो, सेल्फ एम्पावर्ड पीपल हो। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को सेल्फ एम्पावर्ड नहीं करेंगे तो जब वो सिचुएशन आएगी वो अपना डिसीजन ले नहीं पाएगा। इसीलिए आज हमारे बच्चे वर्ल्ड के हर शहर में जा रहे हैं। वी हैव टू क्रिएट ग्लोबल सिटीजन, नॉट नेशनल सिटीजन, जिससे कि कहीं भी जाए वो सर्वाइव कर सके। अब बेसिक प्रिंसिपल पहला लाइफ का, पहला प्रिंसिपल लाइफ का है, एवरीथिंग फ्लोज इन यूनिवर्स। हर चीज फ्लो कर रही है, वाटर, एयर, अर्थ, सब मूव कर रहे हैं। आप देखेंगे कोई भी चीज स्टैटिक नहीं है, इवन मैटर में भी चेंज हो रहा है, बॉडी में भी चेंज हो रहा है, सेल्स बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, मूविंग। इसी तरह से हमारे अंदर जो एनर्जी है वो भी फ्लो करती है। हमारी हेल्थ भी तभी ठीक रहती जब ये एनर्जी फ्लो कर रही है। व्हाटएवर इज फ्लेक्सिबल एंड फ्लोइंग दैट विल ग्रो नेचुरली, व्हाटएवर इज रिजिड एंड ब्लॉक दैट विल विदर एंड डाई। जो चीज फ्लेक्सिबल है, फ्लोइंग है, वो चीज बढ़ती जाती है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, खुद ही ग्रो करेगी। जो चीज रिजिड है, ब्लॉक है, वो खत्म हो जाती। इसीलिए इंडियन माइथोलॉजी में जो भी सिस्टम बनाए गए, जो भी डेटीज बनाए गए, जो भी डिविनिटी हमें सिखाई गई, उसका सिंबल ये था। आपने देखा सभी देवी देवताओं को ऐसा दिखाया, ऐसा या ऐसा, इसका अर्थ क्या है? गिविंग एंड रिसीविंग, रिसीविंग एंड गिविंग, फ्लो। पर हम क्या करने लग गए? इसीलिए किसी देवी देवता को ऐसा नहीं दिखाया। लक्ष्मी को भी कैसा दिखाया? आ रही है, जा रही, पर हमने क्या किया? लक्ष्मी को ब्लॉक करना चालू किया, तो यहां भी ब्लॉक चालू हो गए। इसीलिए सबसे बड़ी बीमारी आज कोरोनरी आर्टरी डिजीज शहर में रहने वालों को हो गई है। नंबर वन किलर, हर मिनट में 4 व्यक्ति जा रहे हैं हार्ट अटैक से। हर साल 60 लाख व्यक्ति बीमार होते हैं। सीएडी इज बिकमिंग नंबर वन किलर। और ये देखा गया हम इंडियंस में ये बीमारी होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। एंड अगर हमने चेंज नहीं किया तो इंडिया विल बी द कैपिटल इन कोरोनरी आर्टरी डिजीज। 60 पेशेंट 100 में से इंडिया में से निकलेंगे। मैं उसमें डिटेल नहीं जाता, डॉक्टर गुप्ता शायद कवर करेंगे। तो एवरीथिंग फ्लोस, बट ऑल अनहैप्पीनेस अराइज when we try to control situation, people over which we don't have any control. हर व्यक्ति क्या करता है? दूसरे को दबाने की, control करने की कोशिश करता है। माता पिता बच्चे को, employee managers, हर चीज हम चाहते हैं control करने की कोशिश करते हैं। Control से क्या होता है? Control कर नहीं पाते, frustration आते हैं, और control करने से फिर बीमारी चालू हो जाती। इसीलिए कहते हैं डिजीज, डिस ईज। डिजीज इज नथिंग व्हेन आई हैव लेफ्ट माय ईज नेचर। कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को कहीं डिस ईज है। डिस ईज है यानी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने से लड़ रहा है। अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स सबसे बड़ा कारण बीमारी और तनाव को लाता है। अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, हम अपने आप ही अपने अंदर लड़ते रहते हैं। इतने प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, फिर सड़क पे जाते हैं, हॉर्न बज रहा है, जा रहा है, कोई चिंता नहीं। इसीलिए एक व्यक्ति यहाँ, ये हमारे पास अक्टूबर में एक रिट्रीट था फॉरेनर्स का, वो लोग अहमदाबाद तक फ्लाइट से आए, अहमदाबाद से यहाँ कार से आए। दादी जी जब उनसे मिली, दादी जी ने कहा आप सब भगवान को याद करते हैं? उन्होंने कहा पहले तो कभी याद इतना नहीं करते थे, जब अहमदाबाद से यहाँ आए तो बहुत याद किया, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी कैसे चला रहा था ये हम तो घबरा गए थे। पहली बार भगवान याद आया और सोचा इस देश को भगवान ही चला रहा है, इतना सब प्रॉब्लम होते हुए कैसे चल रहा है, क्योंकि अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट लेके प्री ऑक्यूपाइड होके वो व्यक्ति काम पे जाता है, सड़क पे जाता है, हॉर्न बजा रहे हैं, वो अपने में आपको बचाना है बचाओ, मेरे को नहीं। इसीलिए रोज अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को हम छोड़ के उस एनर्जी के फ्लो को चालू करें। अनहैप्पीनेस इसीलिए आती है, हम पकड़ने की कोशिश करें। तो किसी चीज को पकड़ो नहीं, विवेकानंद ने कहा, गीता ने कहा, डू नॉट कंट्रोल द लाइफ, बिकम द मास्टर ऑफ द माइंड। कंट्रोल नहीं करो, मास्टर बन जाओ, तो उसी फ्लो को आप एंजॉय करेंगे। देन आई कैन कीप इट। मैं कितनी बार ऐसा करूं, अगर हर सिचुएशन को ऐसा कर रहा हूं, दांत, लिप, क्या होगा? बॉडी के ऊपर असर आएगा. और एंजॉय कर रहा हूं, इजी ले रहा हूं, देख रहा हूं, एक्ट कर रहा हूं, तो बॉडी के ऊपर उसका असर नहीं आएगा. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज एवरीथिंग फ्लोज इन यूनिवर्स. अलाउइंग थिंग्स टू फ्लो नेचुरली इज द वे ऑफ लाइफ. फ्लो को चलने दो, फ्लो से मैच खेलो, रोज अपने तीर कमान तेज करो और महाभारत की लड़ाई रोज के दिन मुझे खेलनी है. शार्प मुझे अपने इंस्ट्रूमेंट रोज करने हैं. माइंड के इंस्ट्रूमेंट रोज शार्प करूंगा तभी मैं एरो छोड़ सकूंगा. मेरा अगर कंसंट्रेशन अच्छा है तो फोकस अच्छा रहेगा और मैं पेनिट्रेट कर सकूंगा. पर मैं कंसंट्रेशन ही अच्छा नहीं है तो मेरा एरो ठीक से काम नहीं करेगा. एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया, दोनों कान उसके जले हुए थे. डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, तुम्हारे दोनों कान कैसे जल गए? उसने कहा मैं मोबाइल फोन था मेरे वहां और आयरन में प्रेस कर रहा था, मोबाइल बचा तो मैंने प्रेस को उठा लिया. डॉक्टर ने कहा दूसरा कान कैसे जल गया? फिर से मोबाइल बज गया, फिर से मैंने प्रेस उठा लिया. ये कभी होता है, आज मोबाइल का स्ट्रेस भी हो गया. कल ही सिरोही के पास व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, मोबाइल पे बात कर रहा था, सामने से जीप आई, बताने लगी. इसलिए कभी भी मोबाइल को ट्रैफिक के समय मत बात करिए, साइड में हो जाइए. मोबाइल के पहले भी हम लोग जीते थे, पर अभी ऐसा हो गया लगता शायद इसके बिना हम जी नहीं पाएंगे. ट्रेन में भी मोबाइल, अब ट्रेन में मैंने देखा कुछ काम नहीं रहता, व्यक्ति सो रहा था, फिर उसको कुछ याद आया, अपनी वाइफ को फोन किया, वो कंप्यूटर बंद कर देना, ईमेल देख लेना, फिर 10 मिनट बाद फिर फोन किया, कल ये चेक कर लेना. अब वो बेचारा सो भी नहीं पा रहा है, जो ट्रेन जर्नी कितनी अच्छी है, रिलैक्स करो, इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता. पर वहां भी मैं अभी इधर पहुंच गया हूं, यहां क्रॉस कर लिया है, प्लेटफॉर्म 4 पे आएगी गाड़ी, पहले भी आती थी, यूज करो. पर कहां, कितना, कैसे यूज करना है करो. अगेंस्ट में नहीं हूं, पर कितना यूज करना है, क्यों करना है, नहीं तो आज स्टेटस सिंबल हो गया, बिना उसके भी वो बात कर रहे हैं, मोबाइल ऑन नहीं है पर उसने पकड़ा हुआ है. वो कहते हैं यस शी गॉट, शी इज अ वेरी बिजी पर्सन. हमें मोबाइल आपके 10, कई बार क्या होता है ऑफिसर कहता है, मेरे सामने एक डॉक्टर का मुझे मालूम है, उसके पास मोबाइल था तो उसने दूसरे रूम में उसका असिस्टेंट बैठा रहता था, कोई भी पेशेंट आया तो उसका मोबाइल चालू हो जाता था. यस यस उसको ये दवाई दे दो, फिर 15 मिनट बाद हाँ उसको ये कर दो. होता क्या था, पेशेंट समझता था ये डॉक्टर कितना बिजी है, हर 10 मिनट में आ रहा, पर उसका असिस्टेंट ही फोन करता रहता था. तो हम ऐसा ना करें, उसका उतना यूज करें जितना जरूरी है. अब स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस नॉर्मल मेडिकल वर्ड है, एक फिजिक्स में भी इसका यूज होता है. स्ट्रेस का अर्थ होता है कि कोई भी सिचुएशन जब हम प्रॉपर कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, मेरी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी अगर नहीं है फिजियोलॉजिकल, तो वो सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम दे रही है तो उसको कहते हैं स्ट्रेस. इसलिए का स्ट्रेस इज ए पेन. आपको सिग्नल मिल गया, दर्द चालू हो गया है, गुस्सा आ रहा और यहाँ दर्द हो रहा है, इसका मतलब सिग्नल मिल गया, गुस्से को कम कर दूं, उस दर्द को कम कर दूं. डिक्शनरी मीनिंग है बर्न आउट, एक ऐसी कंडीशन जब हम कंटिन्यूअसली भाग रहे हैं फिजिकली इमोशनली साइकोलॉजिकली और बॉडी फटीग होती जा रही है, एग्जॉस्ट हो गए, थक गए, जल्दी थकान आने लगी, काम 2 घंटे किया पर थकान आ गई, क्योंकि हम मेंटली इतना भाग रहे हैं. आयुर्वेदा में एक कहावत है, पांव गरम पेट नरम सिर ठंडा, तो आपकी हेल्थ अच्छी. पर अभी क्या हो गया, ये उल्टा हो गया. इसीलिए एक डॉक्टर हमेशा बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कहते हैं आज का व्यक्ति न्यूरोटिक हो रहा है और अगर ये कंटिन्यूअस रहा तो पीपल विल बिकम साइकोटिक. व्हाट इज न्यूरोटिक? वन हु इज मेकिंग कैसल्स इन एयर इज न्यूरोटिक. एंड व्हाट इज साइकोटिक? वन हु इज लिविंग इन दैट कैसल इज साइकोटिक. एंड व्हाट इज साइकेट्रिस्ट? वन हु इज टेकिंग द रेंट फॉर लिविंग इन दैट कैसल इज साइकेट्रिस्ट. तो आज व्यक्ति पांव से नहीं भाग रहा है, माइंड से भाग, बिना वजह भाग रहा है, वनडे मैच खेलने की कोशिश कर रहा है। लाइफ वनडे नहीं है, लाइफ वनडे नहीं है। कभी कभी हमारे इसमें भी हम देखते हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट अगर नॉलेज को नहीं समझ पाते, इमोशनली एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। वनडे मैच नहीं है, इट इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ द लाइफ। आप अपने को रोज तैयार करते जाएंगे तो आपकी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो जो राइट डेफिनेशन है, इट इज ए मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड रिसोर्सेस। डिमांड ज्यादा है और मेरे रिसोर्सेस नहीं है तो वो स्ट्रेस मेरे को डिस्ट्रेस देगी, पर मेरे रिसोर्सेस अच्छे हैं तो वो स्ट्रेस मुझे यू स्ट्रेस होगी। बनना मुझे अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी होऊंगा तो कोई भी बॉलर बॉल फेंकेगा मैं उसको प्ले कर सकूंगा, डर नहीं लगेगा। अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं तो कोई भी सिचुएशन मुझे प्रॉब्लम दे। अब दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कोई स्ट्रेस देने में उनको मजा आता है दूसरों को, क्योंकि उनको खुशी नहीं रहती तो वो देखते हैं दूसरे खुश हैं तो दूसरों को ट्रांसफर भी करते हैं। एक व्यक्ति को बहुत सिर दर्द हो रहा था, वर्क प्लेस पे गया, उसने देखा सब लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, हंस रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसको बड़ा तनाव आ गया कि तब मेरे को सिर दर्द और ये सब एंजॉय कर रहे हैं। धीरे धीरे सबके पास जाने लगा, मुझे बहुत हेडेक हो रहा है। धीरे धीरे सबको सिर दर्द हो गया, फिर खुश हो गया कि मैंने अब मेरे जैसे हो गए। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसी भी हो, उस समय भी मैं अपने को ठीक रखूं। दूसरा प्रॉब्लम जो एनर्जी ब्लॉक करता, पहला ऑलरेडी बता दिया, कंट्रोलिंग नेचर। दूसरा, पोएट एलियट ने कहा, हाफ ऑफ द हार्म इन द वर्ल्ड इज डन ड्यू टू पीपल वांट टू फील इम्पोर्टेंट। जो भी वॉर होते हैं दुनिया में और जो भी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, उसका सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है ईगो का रहता है। स्टेटस सिंबल को मेंटेन करने के लिए वो अपनी एनर्जी स्पेंड करता है, इसलिए ज्यादातर स्ट्रेस मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास को ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो प्रूव करना चाहता है मैं गरीब नहीं हूं। जबकि लाइफ में हमें किसी को प्रूव नहीं करना है, जो मैं हूं हूं, लेट मी एंजॉय, व्हाई आई शुड प्रूव। इसी से ज्यादा हार्म होता है। ईगो मींस EGO, एज गॉड आउट, एज गुड आउट, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी। हम सब जानते हैं दुनिया चलेगी, हम इसलिए नीचे देखते हैं, लोग फोन पे बात करते हैं, नीचे शिविर करने आए रोज फोन पे बात कर रहे हैं, घर हमारे भी कुछ, मैं वही सोचता हूं, वो भी फायरिंग चलती है, लेडी बात कर रही है तो बच्चे को फायरिंग दे रही है, ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लेना। अब 3 दिन में कुछ होने वाला नहीं, आप यहां से कुछ कर नहीं सकते, पर उसका नेचर क्या है कि शायद मेरे बिना वो घर नहीं चला पाएगा, तो इसीलिए प्रॉब्लम आता है। 3 दिन हम भूल जाएं, दुनिया मेरे बिना भी चलेगी, मैं हूं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, तो वो 3 दिन उनको एंजॉय फ्रीडम दो तो उनमें भी ताकत आएगी। ईगो इज द मेन प्रॉब्लम। ईगो वाला सोचता है मैं सूरज हूं, बाकी सब सितारे हैं, जो मैं बोल रहा हूं वही ठीक है, और उसकी सबसे एनर्जी जाती है, वही टाइट ज्यादा हो जाता है, उसी को स्पॉन्डोलाइटिस आर्थराइटिस ज्यादा आता है, जो अपने को स्टिफ कर लेता है। ईगो मींस स्टिफनेस, स्टिफ, ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीवन, एक्सेप्ट हिमसेल्फ, तो टाइट हो गया, तो इसीलिए स्पॉन्डोलाइटिस आर्थराइटिस कम आना। थर्ड, हर व्यक्ति, ये मेजॉरिटी प्रॉब्लम है पेरेंट्स और बच्चों का। इंडिया का एक मेजर स्ट्रेस है पेरेंट्स एंड बच्चे, जिसमें मैंने कहा इंडियन सोसाइटी अपने आप में अलग है, दूसरी जगह ये मेजर इतना नहीं होता जितना हमारे देश में होता। व्यक्ति सब कुछ सह लेता है पर घर में कुछ गड़बड़ हुई, वाइफ बच्चे पेरेंट्स में तो प्रॉब्लम, वो इमोशनली सह नहीं पाता, और यही लड़ाई मेजर स्ट्रेस जहां जा भी गया इससे, डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट, वाइफ, प्रोफेसर, लड़की टीनेजर 16 ईयर, तीनों को स्ट्रेस। डॉक्टर, तेरे को डॉक्टर ही बनना है। लड़की कहती नहीं बनना। मदर कहती अच्छा डॉक्टर नहीं बन तो प्रोफेसर बन। नहीं बनना। तीनों में क्लैशेस। फादर सोच रहा है जो मेरा परसेप्शन है वही मेरे बच्चे का होना चाहिए। और हम सभी जानते हैं हरेक का परसेप्शन अपना अपना होता है। मैं अपनी ड्रेस से चश्मे से दूसरे को देखूंगा तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का एक और मेन प्रिंसिपल है बी नॉन जजमेंटल व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। बच्चे को देखो, नहीं तो अभी बाढ़ आ गई है गुजरात पंजाब में, मैंने देखा लड़का डॉक्टर ही होना चाहिए, इंजीनियर ही होना चाहिए, दे प्रेशर पीएमटी के इसके। लड़का कहीं तो टॉलरेट कर लेता है, कहीं नहीं टॉलरेट करता। अभी रिसेंटली मुझे मैसेज आया, बहुत अच्छा डॉक्टर, उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ, यंग डॉक्टर एमडी कर रहा है। क्या देखा मैंने, हमेशा उसमें वो जो कॉम्पिटिटिव और प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस थे पेरेंट्स के खुद के, वो काफी हाई थे। उसको अब मैनेज नहीं कर पाया तो मल्टीपल प्रॉब्लम चालू हुआ। जब कभी भी प्रेशर इतने बढ़ जाते हैं तो ब्रेन की कैपेसिटी अगर नहीं है तो हमारे नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए कभी भी अपने चश्मे से बच्चे को मत देखो। लेट हिम कम आउट व्हाट इज व्हाट ही वांट। आजकल एजुकेशन का भी नया तरीका आ गया है। लेटेस्ट टेक्निक ये है, आप आए, प्रोफेसर आया, बोला आज का चैप्टर ये है, पीछे कंप्यूटर और बुक्स हैं, खत्म, बोल के चला गया। लड़के जाएंगे कंप्यूटर पे देखेंगे, बुक्स में देखेंगे, फिर आएगा, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, खत्म। इसीलिए कई कॉलेज में रूम बनाए गए, उस रूम में लड़का जो जाए वो बोलेगा प्रोफेसर को आई वॉन्ट टू डू दिस, प्रोफेसर को बोलना पड़ेगा यस डू इट। उसको कहा गया क्रिएटिव रूम, क्योंकि जब तक बच्चा सोचेगा नहीं तो उसकी ब्रेन की कैपेसिटी डेवलप नहीं होगी। हम क्या कर रहे हैं, अपने उससे उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्योंकि मैं गरीब पैदा हुआ था तो मेरे बच्चे को गरीबी टच नहीं करना चाहिए, तो ओवर प्रोटेक्शन दे देते हैं। तो बच्चा उठ ब्रश कर, 16 साल का हो गया, उठ। अब उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिले, 6 साल बाद वो उठेगा ही सोया रहेगा। ये भी देखा मैंने, ये भी देखा, प्रोफेसर गोल्ड मेडलिस्ट है, ही इज द डीन ऑफ कॉलेज, वाइफ हाउस वाइफ है, ही इज अ पीएचडी, सॉफ्टवेयर का मास्टर है, जीनियस लड़का बड़ा। उसका फादर भी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रिटायर्ड। अब इस बच्चे की हालत क्या, तेरे को मेरे जैसा जीनियस बनना है, पीएचडी, दे फायरिंग हार्ड, 10वीं तक उसको कहीं जाने नहीं दिया, पढ़ाई मार पढ़ाई मार। 10वीं के बाद वो लड़का रिबेलियन हो गया, लड़के ने इंजीनियरिंग कॉलेज में मिली एडमिशन, नहीं चाहिए। क्यों, वो जो उसने प्रेशर सहे, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट भी देना पड़ा, घर में इतने प्रॉब्लम है, क्योंकि ये फादर अपनी नजर से उस बच्चे को देख रहा, जबकि बच्चे की कैपेसिटी वो नहीं थी। इसलिए परसेप्शन को आप अपने चश्मे से दुनिया को न देखें। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, डू नॉट सी द थिंग एज यू आर, सी द थिंग एज दे आर। आप किसी भी चीज को नेचुरल देखो, जैसा है, आप अपने चश्मे से देखने की कोशिश नहीं करो, तो फिर क्लैशेस ये वाले नहीं आएंगे। लोकस ऑफ कंट्रोल आउटसाइड, ये भी एक हम सभी में मेजर इंफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्सेस आ जाते, हम अपना इवेल्युएशन ठीक नहीं करते, पर्टिकुलरली यंगस्टर्स और गर्ल्स में बहुत ये इंफ्यूरिटी कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, और उसके कारण अभी बहुत प्रॉब्लम है। एक लड़की ने सुसाइड किया दिल्ली में, यंग लड़की 20 साल की, क्यों, वो रोज टीवी देखती थी और रैप पर जो मॉडल आते थे उसने देखा उसका वेट उस मॉडल से थोड़ा ज्यादा हो गया, तो उसको इन्फिरिटी आ गई और सुसाइड कर ली। एक सेकंड का रहता गेम। एक लड़की 3 साल फर्स्ट आई, टॉप गोल्ड मेडलिस्ट, लास्ट एग्जाम में सेकंड आई, सुसाइड कर लिया। नोट में लिखा, मेरे माता पिता ने कभी मुझे नहीं बताया कि मैं सेकंड भी आ सकती हूं, इसलिए अपने परसेप्शन से और अपना लोकस ऑफ कंट्रोल अंदर रखिए. नो वन कैन हर्ट यू अनलेस यू वॉन्ट टू गेट हर्ट. आपको कोई घायल नहीं कर सकता जब तक आपको घायल खुद नहीं चाहते हो. लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल. मैं जनरली यंगस्टर को केवल एक ही चीज यही सिखाता हूं, अपना लोकस ऑफ कंट्रोल अंदर रखिए. अंदर रखेंगे तो कोई आपको हर्ट नहीं कर सकेगा. लास्ट, डिजायर्स फुलफिल्ड आर नॉट फुलफिल्ड. हमारी इच्छाएं बहुत रहती हैं. आज स्ट्रेस का एक मेजर कारण भी है, हम जो देखते हैं हमारी इच्छा होती है ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं. जरूरत होती नहीं, इसीलिए कई साफ झाड़ू मारने वाली भाइयों ने भी मोबाइल ले लिया. आजकल स्टेटस सिंबल हो गया है. हमारी जरूरत है कि नहीं है? जरूरत है तो लो, नहीं है तो मत लो. इसीलिए डिजायर फुलफिल्ड आर नॉट फुलफिल्ड. फिर भी व्यक्ति टेंस रहता है. एक डॉक्टर ने मुझे बड़ा अच्छा रियल स्टोरी बताई. हेल्थ मिनिस्टर जा रहे हैं राउंड पर मेंटल हॉस्पिटल में. उनका एक फ्रेंड वहां भर्ती था, मिस्टर एक्स. तो बोला, ये मिस्टर एक्स यहां क्या कर रहा है? तो उसके दोस्त ने कहा, अरे अपने क्लास में बैच में रीटा करके लड़की थी, उसकी इससे शादी होने वाली थी, नहीं हुई तो ये भर्ती हो गया. दूसरे वार्ड में गए तो देखा मिस्टर वाई सो रहा था, उन्हीं का बैचमेन. बोला, ये वाई यहां क्यों सोया हुआ है? इसकी शादी रीटा से हो गई. अच्छा, लाफिंग इज ए एंटीडोट ऑफ स्ट्रेस. मैं आपको क्यों हंसा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने सीरियस क्लासेस बहनों की सब सुन ली होगी, तो क्लासेस का स्ट्रेस नहीं है. मैं आपको 21 जन्म की गारंटी नहीं, एक जन्म आपको खुश हंसी, एक सेकंड खुश रहूं, एक मिनट खुश रहूं, तो मेरा दूसरा मिनट भी खुश रहेगा. और जितना हंसेंगे हमारा बॉडी का केमिकल चेंज होता है. अभी देखा गया है, लाफ्टर इज ए एंटीडोट ऑफ स्ट्रेस. जब मौका मिले खुल के हंसी. आपने देखा होगा वो मूवी अभी रिसेंटली आई, मुन्ना रा, क्या नाम, MBBS. उसमें वो डीन क्या करता था, जब उसको स्ट्रेस आता था हंसने लग जाता था, पर बेचारा कर नहीं पाता था. पर इसका अर्थ है कि हमें कहीं हंसने के लिए जाना नहीं है, हम उस सिचुएशन को लाइटली. नहीं तो हम लाफिंग क्लब जाके ज्वाइन करें और हंसे, वहां वापिस आए फिर सीरियस हो जाए, ऐसा नहीं करना है. लाफ्टर मीन्स इजी नेचर, हर चीज को इजी पास ऑन करना. नहीं तो मैं क्लब में गया था, वहां खूब हंसे 15 मिनट, वापिस आए सीरियस हो गए. बोर्ड लगा देते हैं सौ विथ ए स्माइल, अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति ऐसे चिंता में बैठा. तो इसीलिए इजी हमारे इमोशंस को बाहर निकालता है. ये देखा गया जो व्यक्ति हंस सकता है वो फिजियोलॉजिकल है, जो सीरियस है वो पैथोलॉजिकल है. इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का भी अर्थ सीरियसनेस नहीं है. जो मैंने बताया, कभी कभी हमारे 5% स्टूडेंट बहुत सीरियस हो जाते हैं, बहुत वो हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग ओम शांति नहीं, सीरियस ही जाता. उसको लगता है मैं बहुत जल्दी ऊपर फास्ट चले जाऊं. सीरियस नहीं, श्री कृष्ण जैसा. मेरे को बहुत अच्छा लगता है बदक. बदक कैसे जाती है? डक, आपने देखा होगा, डक पानी में तैरती है तो कैसे तैरती है? पांव नीचे, पैडलिंग उसकी नीचे चलती है, और पानी के ऊपर उसके पंख ऐसे चलते हैं. और गर्दन कैसे करती है? इधर देखेगी, इधर देखेगी, हाय हेलो हेलो हाय. और पैडलिंग कहां कर रही है? नीचे, पता भी नहीं लगे. हमारे भी जिंदगी में क्या करना है? मेडिटेशन भी करना है. सीरियसली नहीं करें मेडिटेशन, लोग समझते हैं सीरियस है अब सीरियस है. मेडिटेशन मीन्स एंजॉयिंग योर ओन सेल्फ. आप इजी बैठे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आराम से बैठकर देख रहे हो, खाली विड्रॉ कर रहे हो, ब्रेक लगाना आ गया. आप मेडिटेशन का सिंपल अर्थ है, मैं अपनी ब्रेक अब मेरे कंट्रोल में आ गई, मुझे किस सिचुएशन में कितना इन्वॉल्व होना है देखिए और ब्रेक लगाइए. तो सीरियस ना हो, इजी रहे. अब ये जॉब स्ट्रेस है, कहीं से भी आ सकती. मेजर चार सिचुएशन है, घर, खुद, वर्क, रिलेशनशिप, सिचुएशन. हर व्यक्ति को ये चार से कहीं ना कहीं आती है. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्यक्ति खुद, और यहां जो भी सिखाया जा रहा है वो इसी पे फोकस है. खुद ठीक है तो सब कुछ ठीक है, खुद ठीक नहीं है तो ये तीनों जगह कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम करेगा। जॉब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जॉब डिससेटिस्फेक्शन, जॉब में मजा नहीं आ रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा हार्ट अटैक सोमवार को होते हैं, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट मंडे को होते हैं। क्यों होते हैं मंडे को? मंडे को उठा, संडे एंजॉय किया, मंडे को उठा उसकी फाइल खुली पुरानी, अरे वही काम, वही बॉस, वही बोरिंग वर्क, कहाँ जा रहा हूं मैं। अगर हार्ट कमजोर है, अच्छा तुझे प्रॉब्लम मजा नहीं आ रहा है, चल मुझे भी मजा नहीं आ रहा है, तो कोरोनरी दब गई, एंजाइना चालू हो गया, हार्ट अटैक हो गया। जो हम माइंड में सोचते हैं वैसा ही बेचारा शरीर कहता है, तुझे मजा नहीं आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तो मैं भी डिप्रेस हो जाती हूँ, तो कोरोनरी आजकल इसलिए एंजाइना बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया। आपने देखा ना आजकल जिस लीडर को छापा पड़ता है, उसकी जांच होती है, कहाँ भर्ती हो जाता है वो? हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर उसको देखता है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये आजकल कॉमन हो गया है, इसको कहा गया स्कैम एंजाइना। जब कभी भी स्कैम वाले हमारे यहाँ आते हैं ऐसा होता है, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, क्योंकि उसको प्रूव नहीं कर सकते कि इसको क्या प्रॉब्लम है, कोई भी प्रूव नहीं कर सकता, तो इसीलिए सबसे कॉमन डायग्नोसिस बना के उसको भर्ती कर देते हैं, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन लेके जाओ डॉक्टर की अब ड्यूटी है, यू हैव टू एडमिट। अभी ऐसा हो गया है कोई भी व्यक्ति चेस्ट पेन लेके जाए, पहले हमारे टाइम में पढ़ाया गया 60 के बाद आए तो उसका ECG करो, ये करो, अब क्या कहा जाता है 20 साल का लड़का भी आए पहला देखो कहीं उसको ये तो नहीं है, क्योंकि हमने 24 साल के लड़के को भी देखा हार्ट अटैक माउंट आबू में ही। अब शायद आने वाले 10 साल में ये हो जाएगा, बच्चा भी स्कूल वाला आ रहा है चेस्ट पेन लेके, पहले देखो कहीं हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा, क्योंकि बेचारे को प्रेशर उसका स्कूल का, कॉम्पिटिशन का, पेरेंट्स का, टीचर का चेंज हो गया। जॉब डिससेटिस्फेक्शन, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, कम्युनिकेशन गैप, क्विक फिक्स सक्सेस, चैलेंजेस नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका जॉब अच्छा है, सैलरी अच्छी है, फिर भी डिप्रेशन में है, क्यों? कोई पूछ नहीं रहा है मेरे से, कोई चैलेंज नहीं। एक व्यक्ति को अभी मैंने देखा, बहुत क्लोज फैमिली है, इंजीनियर है, टॉप पोस्ट पर गया, अब उसके बाद उसको हार्ट का प्रॉब्लम। जब इमोशनल साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया, क्या निकला, जो टॉप की टीम थी MDs की, वो लोग जो डिसीशन ले रहे थे इससे नहीं पूछते थे, तो इसको वो मजा आने नहीं लगा कि मैं यहाँ आके केवल बैठता हूँ, मेरे से डिसीशन पूछा ही नहीं जाता, तो वो जॉब को एंजॉय नहीं करने लगा। धीरे धीरे हार्ट की डिजीज आई, डायबिटीज आई, अल्सरेटिव कोलाइटिस आई। घर में क्या होता था, उसकी वाइफ बड़ी टाइट, वाइफ थी टाइप ए पर्सनैलिटी, वाइफ यानी परफेक्ट, जो चीज मैं कहूँ वैसा ही होना चाहिए। डिनर टाइम 8:30 नहीं आए, सबको डांट लगे। किचन में वो बेचारा कभी सोचे खाना बनाऊं जाके, एंजॉय करूं संडे को, कहीं ना कहीं तो अपने इमोशन को निकालूं, नहीं अलाउड नहीं है, वहीं बैठो आप। तो बेचारा घर में भी कुछ नहीं बोल पाए, ऑफिस में ना बोल पाए, तो क्या हुआ, अंदर ही अंदर रखता गया। इसको कहते हैं सप्रेसिव पर्सनालिटी, नॉन एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी, एंड नॉन एक्सप्रेशन इज द मेजर कॉज ऑफ डिजीज। ये देखा गया जिन जो व्यक्ति अपने इमोशंस को प्रॉपर वेंटिलेट नहीं कर सकते, सप्रेस करते रहते हैं, सप्रेशन डिप्रेस इम्यून सिस्टम। अभी ये स्टडी आ गई है कि जो व्यक्ति जितना अपने को दबाता है उतना उसका इम्यून सिस्टम कम हो जाता है। तो जॉब में चैलेंजेस नहीं है, इसलिए कई व्यक्ति कहते हैं चैलेंजेस लो, चैलेंजेस लो, आपका माइंड काम करेगा। अगर चैलेंजेस नहीं लेंगे हम उसी जगह वहीं का वहीं सालों रह जाते हैं। अब मैन में बहुत बड़ी कैपेसिटी है, इसको फिजियोलॉजी में कहते हैं एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी का अर्थ होता है हम अपने कंडीशनिंग रिस्पॉन्स को कैसे चेंज कर सकते। हर व्यक्ति कोई भी सिचुएशन को अपनी पर्सनैलिटी से रिस्पॉन्ड करता है, जो उसकी पर्सनैलिटी बचपन से बनी है। ज्यादातर हम सब अपनी प्रीवियस मेमोरी के अनुसार काम करते हैं, अगर मेरे को बचपन में कोई सीन ऐसा दिख गया जिसमें किसी को मैंने डूबते हुए देखा पानी में, या बच्चे को कुछ देखा पानी से नुकसान होते हुए, तो मेरी कंडीशनिंग क्या हो गई, वाटर इज बैड। तो अब दूसरों को भी क्या करूंगा, कोई पानी के पास जाएगा मेरा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, उसको रोकूंगा, नहीं जा। एडॉप्टेबिलिटी का अर्थ है कि कैसे मैं अपनी प्रीवियस रिस्पॉन्सेस को चेंज करता हूं, और उसी के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है गैस, जनरल एडॉप्शन सिंड्रोम। हर व्यक्ति की एडॉप्टेबिलिटी रहती है, जितनी आपकी एडॉप्टेबिलिटी अच्छी होगी उतना आप फिट होंगे। आर्मी में भी क्या किया जाता है, उनकी एडॉप्टेबिलिटी को बढ़ाया जाता है, सिम्युलेटेड एक्सपीरियंस दिए जाते हैं पहाड़ पर, जंगल पर, इस पर, तो जिससे उसके रिफ्लेक्सेस बने रहे। इसी तरह से हमें भी अपने जीवन में अपनी एडॉप्टेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा अगर 21वीं सदी में जीना है। और एडॉप्टेबिलिटी डिपेंड करती है योर फिजिकल कैपेसिटी, योर मेंटल कैपेसिटी, योर सोशल कैपेसिटी, योर स्पिरिचुअल कैपेसिटी, जिसको आजकल कहा जाता है IQ, EQ, SQ। तीनों आपको शार्प करने पड़ेंगे। बॉडी में स्ट्रेंथ पैदा करना पड़ेगी फिजिकल एक्सरसाइज से, माइंड को बढ़ाना पड़ेगा, और सोल में इंड्योरेंस लाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ इन द माइंड, इंड्योरेंस इन द सोल, एंड स्टेमिना इन द बॉडी। तीनों आप फिट हैं तो आप कोई भी सिचुएशन को सामना कर सकेंगे। अगर आप ओवरवेट है, वजन ज्यादा है, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया, ट्रेन छूट रही है, आप भागे, सामान ऊपर लेके पकड़ के चले, एंजाइमा, यही हुआ, आबू रोड, सामान उठ के लेके आया, प्लेटफॉर्म क्रॉस किया, हार्ट का प्रॉब्लम चालू। क्यों हुआ? क्योंकि कभी भी हार्ट को उसने कंडीशनिंग की नहीं। इसीलिए आज जरूरी है, सरवाइव करना है तो हमें फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल कैपेसिटी तीनों को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए आजकल मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का केवल ये अर्थ नहीं है कि हमें भगवान को याद करना, इट इज नॉट। स्पिरिचुअलिटी बेसिकली मीन्स हाउ यू आर इंक्रीजिंग योर इंड्योरेंस, सो दैट व्हेन सिचुएशन कम यू कैन फेस दैट सिचुएशन इन अ बेटर। अब क्या होता है, हर व्यक्ति अपनी लड़ाई अपने लेवल पे लड़ता है, हर व्यक्ति अपना एक कंफर्ट जोन बना लेता है बचपन से, जो उसकी कंडीशनिंग हुई बड़े होने पर, और जिसके जितने पेरेंट्स और टीचर्स, एनवायरमेंट, जितना उसको फायरिंग मिलता है, इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, उस व्यक्ति का कंफर्ट जोन कमजोर होगा। अब मैंने यहां बैठा हूं, आराम से बैठा हूं, पांव नीचे रखे, अब मेरे आगे स्टूल दे दिया गया, अब मैं सोचूंगा क्यों तकलीफ ले रहा हूं, पांव नीचे यहां रख लो, रोज मेरे को दिया गया, अब मेरे को एक दिन ये नहीं मिला तो मेरे में क्या चालू हो जाएगा। इसी तरीके से हम भी क्या करते हैं, जीवन में अपना एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं और उसी के अंदर हम रहने की कोशिश करते हैं। इस कंफर्ट जोन के अंदर ही मैं प्ले करना चाहता हूं, मेरा +2 -2 अगर कंफर्ट जोन है, कोई भी सिचुएशन अगर मेरी +5 की आएगी लाइफ में तो क्या होगा, -4 की आ गई स्ट्रेस, क्योंकि मेरा कंफर्ट जोन केवल इतना ही था। आज हम सभी जानते हैं कभी भी +10 की आ सकती, -10 की आ सकती, उसमें मैं अपने को कैसे तैयार करूं। ये कंफर्ट जोन कॉम्प्लेक्स मीन्स यू इंक्रीज योर कैपेसिटी बोथ साइड, क्योंकि हार्ट अटैक केवल डिप्रेशन और डर से नहीं होता है, हार्ट अटैक ओवर इमोशनल एक्साइटमेंट से भी हो जाता है। किसी को सडन एक्साइटमेंट हुआ, इवन सडन कुछ मैच जीत लिया, ब्राजील में आपने देखा वर्ल्ड कप जीता वर्ल्ड फुटबॉल का, तो क्या हुआ, 5 को हार्ट अटैक हो गया जीतने के बाद भी। क्यों हुआ, सडन एक्साइटमेंट, व्यक्ति एकदम ऊपर चला गया, और डाउन में भी होता ही डर, सडनली डर आया तो क्या हुआ, एकदम खून हमारा फियर में नीचे चला जाता है। जब कभी भी हम कोई भी सिचुएशन एंटीसिपेट करते हैं, ये तकलीफ देगी, अनकंफर्टेबल है, तो वो हमारे को बॉडी को भी तैयारी कराती है। जैसे एक व्यक्ति की सर्जरी, एक लेडी की किडनी की सर्जरी फिक्स हुई, किडनी रिमूव करने की और नया किडनी लगाने, उसको बोला गया ये बड़ा ऑपरेशन है, आपको थोड़ा दर्द भी होगा बाद में, पर धीरे धीरे ठीक होगा। उसको एनेस्थीसिया दिया गया, एनेस्थीसिया के बाद डॉक्टर ने फिर से चेकअप किया तो लगा कि अभी इसको जरूरत नहीं है ट्रांसप्लांट की, वी कैन डू लेटर ऑन। उसको वापस रिवर्स किया गया एनेस्थीसिया। जैसे ही लेडी एनेस्थीसिया से बाहर आई, पहला शब्द उसने बोला बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ उसके माइंड में, क्या था, मेरा तो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। उसने एंटीसिपेट पहले ही कर लिया जबकि हुआ नहीं था। तो यही होता हमारे साथ भी, जब हम किसी सिचुएशन को फियरफुल लेते हैं तो बॉडी भी हमारा ब्लड नीचे कलेक्ट कर लेती है, रिटर्न ब्लड नहीं आता। इसलिए फियर से भी लोगों को हार्ट अटैक होता है। स्नेक पॉइजन में, स्नेक बाइटिंग में व्यक्ति पॉइजन से ज्यादा नहीं मरता जितना डर से मरता है। 90% स्नेक आर नॉन पॉइजनस। अगर आपको आपको काट भी लिया और कह दिया जाए ये बहुत कुछ नहीं है, एक पेपर में ही आया था, मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ कैसे माइंड का इफेक्ट आता है। खेत में काम कर रहा था, उसको किसी चीज ने काटा, उसने देखा कुछ नहीं दिखा तो नॉर्मल, उसने कुछ टेक केयर नहीं किया। एक साल बाद फिर से उसी जगह काम कर रहा था तो उसको सांप की खाल दिखी, प्रीवियस मेमोरी खुली, उस दिन मुझे सांप नहीं काटा था और उस शाम को उसको हार्ट अटैक हुआ। पहले नहीं हुआ था क्योंकि माइंड ने उसको जूम नहीं किया। माइंड जब जूम कर देता है सिचुएशन को, उसका हमारे बॉडी के ऊपर असर आता है। सो फियर मीन्स फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। ज्यादातर फियर इमेजिनरी है, एग्जामिनेशन फियर बच्चों का। आप उसी बच्चे को ट्रेन कर दें वो एग्जाम अच्छी तरह देगा, पर जैसे ही वो एक्सटर्नल को देखता है, वाइवा मुंह में सब याद किया है पर डर के मारे बोल नहीं पाता, स्टेज परफॉर्मेंस सेम फियर। तो इसीलिए आजकल गेम्स में भी सिखाया जा रहा है हाउ यू इंक्रीज योर साइकोलॉजिकल प्रोफाइल, कैसे आपको मैच जीतना है। तो ज्यादातर फियर हमारे इमेजिनरी है और हमारा माइंड डिफरेंशिएट नहीं करता रियल और अनरियल में। अब रिसर्च आ गया है कि हमारे विचार हमारे शरीर को असर करते हैं, क्योंकि माइंड डिफरेंशिएट नहीं करता है कि रियल है कि अनरियल है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं यहाँ सोच रहा हूँ, चिंता कर रहा हूँ, शरीर को असर कर। इसीलिए आजकल कहा जाता है सोचने के पहले भी सोचो, थिंक बिफोर यू थिंक। पहले कहते थे बोलने के पहले सोचो, क्योंकि आपका हर विचार शरीर को असर कर। इसीलिए यहाँ मेडिटेशन का भी जो प्रोसेस है ब्रह्मा कुमारी का, टोटल थॉट्स का है। कुछ नहीं करना है, थॉट्स को चैनलाइज करना अच्छी तरह और बॉडी को रिलैक्स कर। बॉडी खुद ही रिलैक्स होगी, पर यहाँ टेंस होगा तो बॉडी को आप कुछ भी कर लो रिलैक्स नहीं हो। अब ये बेसिक मैकेनिज्म है शरीर का। हमारे बॉडी ब्रेन में दो मैकेनिज्म काम करते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन जो जाती है ब्रेन में जाती है एनालिस, फिर दूसरे सेंटर पे जाती है, एनालिसिस होती है, इंफॉर्मेशन हमारे इमोशनल सेंटर पे आती है और फिर उसके अनुसार हम एक्शन लेते हैं। यहाँ से आंसर आएगा, रिफाइन होगी इंफॉर्मेशन, कहेगी इसको इमोशनल सेंटर को कर, हम करते हैं। इसको कहते हैं लॉजिकल रूट, एनालिसिस रूट। भगवान ने कुछ एक शॉर्ट रूट भी बनाया, कुछ इंफॉर्मेशन हमारी इस सेंटर से डायरेक्टली आ जाती है, 15-20% इंफॉर्मेशन। ये रूट बनाया गया इमरजेंसी के लिए। अब क्या होता है, अगर बच्चे की ट्रेनिंग आपने ठीक नहीं दी, उसको कंटिन्यूस फायरिंग दी, तो वो बच्चे का रूट कौन सा ज्यादा काम करेगा, शॉर्ट रूट ज्यादा काम करेगा। यही जो मेजर प्रॉब्लम आज मैं बता रहा हूं वो यही हो गया है कि जो लॉजिकल रूट है उसका नेटवर्क बनना चाहिए, वो बना ही नहीं। तो अब उसकी क्या हो गई, हर समय शॉर्ट रूट करना चाहता है। शॉर्ट रूट क्यों बनाया भगवान ने, आपने गर्म पानी में हाथ डाला, आप क्या करोगे, सडनली हटा दोगे। उस समय लॉजिकल रूट से नहीं सोचोगे कितने चांसेस हैं, क्या है, कर सकता हूं कि नहीं, तब तक हाथ गायब। मैसेज आया कर, क्रॉस कर रहा हूँ रोड को, देखा कोई कार नहीं, क्रॉस कर ली। लॉजिकल नहीं सोचूंगा चांसेस हैं कि नहीं, कितने हैं, 24 घंटे खड़े रहूंगा। पर कई बच्चों की आदत, व्यक्तियों की आदत आज इम्पल्सिव पर्सनैलिटी हो, शॉर्ट फास्ट, अभी सोचा भी नहीं एक्ट कर दिया, उससे सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है। इसी को कहा गया एनिमल बिहेवियर। आप जितने भी रेप केसेस, सेक्सुअल वायलेंस, सडनली देखा एकदम, सोचा भी नहीं क्या होने वाला, लड़के ने कर दिया, जेल गया, रेकिंग कर ली मेडिकल कॉलेज में, रेस्टिगेट कर, क्यों? इम्पल्सिव नेचर। व्यक्ति बहुत इंटेलेक्चुअल है, कार में बैठा है, जा रहा है वर्क प्लेस पे, सामने गेट बंद है, रेलवे क्रॉसिंग है, एक ट्रेन क्रॉस कर गई, गेट नहीं खुला, अंदर गुस्सा आया, गया अंदर, एक की पिटाई कर दी। उस एक सेकंड के इमोशन से उस व्यक्ति को कई तरह के प्रॉब्लम फेस करने। उसने कहा सर दूसरी ट्रेन जब तक क्रॉस नहीं होगी मैं खोल नहीं सकता। इसको क्या कहा जाता है? इम्पल्सिव नेचर। और वही सबसे ज्यादा डैमेज कर रहा है। इसलिए पहले के लोग कहते थे गुस्सा आए तो 10 तक सोचो, पानी पियो। क्यों कहते थे? जब हम 10 तक गिनती करेंगे मेरा लॉजिकल रूट चालू हो जाएगा, क्यों करना है, बाद में दूंगा जवाब, ठीक है। तो वो जो इम्पल्सिव नेचर था वो मेरा कम हो गया। और इसी के दोनों को बैलेंस हमें रखना है। सबसे बड़ी चीज हमें दोनों का बैलेंस रखें। इसीलिए इंडिया में नमस्ते करते हैं। क्यों नमस्ते करते हैं इंडिया में? मैं, ये हमारा लेफ्ट है, लेफ्ट है लॉजिकल सेंटर्स ब्रेन के, राइट इमोशनल सेंटर्स। तो जब हम नमस्ते करते हैं हम कहते हैं मैं दिल और दिमाग से आपके साथ हूं। और बाहर के देशों में हाथ मिलाते हैं, 50% मैं आपके साथ हूं। इसीलिए भारत का नमस्ते बड़ा अच्छा। इसका अर्थ है मेरे एनर्जी सर्किट काम कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, फ्लो चल रहा है। इसीलिए जब कभी भी प्रॉब्लम आए, फ्रस्ट्रेशन आए, ताली बजाओ, बजाइए। हाँ, इससे दोनों ब्रेन, इससे क्या हो रहा है, एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर हो रहा है, दोनों ब्रेन डेवलप होंगे। ज्यादातर लोगों के क्या हो रहे हैं आजकल, एक ब्रेन ज्यादा डेवलप हो रहा है। मेल हूं मैं, मेल है, मेल की पर्सनालिटी क्या होती है, लॉजिकल, तो मेल पर्सनालिटी। लेडी की पर्सनालिटी क्या होती है, राइट इमोशनल। अगर वो केवल राइट ही राइट यूज करती है, जो ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में हो जाता है, फेल्योर हो जाता है। दोनों हमें बैलेंस, कहां लॉजिकल कहां इमोशनल। अगर अच्छा लीडर बनना है आपको, लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन का CAO बनना है, आप लॉजिकल से कुछ नहीं कर सकते। उस समय आपको क्या करना है, सपोर्ट, राइट वाला यूज करना है। हाउ यू मोटिवेट पीपुल, हाउ यू गेट वर्क डन फ्रॉम पीपुल। ब्रह्म कुमारी इसका भी मैनेजमेंट क्या है, फैमिली मैनेजमेंट। कोई लीडर कुछ नहीं, कोई टीम लीडर नहीं है यहाँ। इसीलिए दादी से पूछते हैं आपका गुरु कौन है, दादी कहती है शिव, गॉड इज, यहाँ कोई गुरु नहीं है। सबसे अच्छी चीज जो लगी थी मिस्टर चिन्ना रेड्डी को जब यहाँ आए थे पहली बार माउंट आबू, एक्स गवर्नर थे राजस्थान के, अभी तो शरीर छोड़ दिया। वो जिस दिन आए उन्होंने देखा 4000 टीचर्स बैठी हुई थी, तो उसने दादी से पूछा कौन ब्रह्मा कुमारी कौन है, दादी ने कहा ये सब है। तो उसको ये बड़ी चीज अपील कर गई कि ये 4000 लीडर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति जाएगा तो ये 4000 तैयार हैं। फिर वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में गया जहां वो जाता था, मैं नाम नहीं दूंगा। उसने कहा सर मुझे बहुत टेंशन है आपके यहाँ। बोला क्यों? बोला आप जब तक हो तो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, और आप नहीं है तो क्या होगा। वो बोला मुझे भी नहीं मालूम क्या होगा। इसीलिए हमें अपने समान टीम बनाना पड़ती है, सेल्फ एम्पावर्ड टीम, तो तभी वो डिसीशन ले सकेगी। और तभी आता है जब हम बैलेंस, दोनों का बैलेंस रखें। इसीलिए जब मौका मिले वॉक करते समय क्लैप करें, वॉकिंग में आधा राउंड, तो दोनों डेवलप होंगे। लीडर स्टीवन कोवी ने क्या कहा अपनी किताब में, सेवन हैबिट्स ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन, उसने कहा मैनेज बाय लेफ्ट लीड बाय राइट। ए लीडर इज वन हु यूज बोथ, लॉजिकल भी, प्लानिंग भी, एनालिसिस भी और विजन भी। लीडर का सबसे बड़ा काम होता है जब आप टॉप के हो, द स्किल यू रिक्वायर्ड इन टॉप मैनेजमेंट इज नॉट ह्यूमन रिसोर्सेज, HRD खत्म हो जाता है वहां आता है विजन। हाउ यू क्रिएट विजन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 10 ईयर्स में मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को कहां ले जाना चाहता हूं, विजनरी पीपल। और उसके पहले होती है कंसेप्चुअल स्किल। आप कैसे नई नई आइडिया रोज ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाते हो, इसीलिए आजकल टॉप लीडर्स को बड़ी कंपनीज भेजती है छुट्टी पे, उनको छुट्टी पे पैसा देके भेजती है, जाओ जाओ पर सोचना, छुट्टी देती है, कहती है जाके सोचना क्या करोगे। इसीलिए 21वीं सदी में वो सर्वाइव करेगा जो क्रिएटिव है, जो नई नई आइडियाज ला रहा है। और नई आइडियाज तभी आती जब हम बैलेंस रख, नहीं तो ज्यादातर हम वही सालों वही कर रहे हैं तो वही मिलेगा। लीडर वही बनता है जो हर दिन अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक नया चीज लेके आता है। हेनरी फोर्ड का था, उसकी कार क्यों अच्छी बन गई, क्योंकि उसने भी जब चालू किया ऑटोमोबाइल में, रोज एक चेंज लाता था अपने ऑर्गेनाइजेशन में कि आज के दिन में अपनी कार में क्या नई चीज लाऊं। धीरे धीरे उसने फोर्ड कार को एक यूनिक कार बना दी, उसका इंजन, उसके ब्रेक्स, उसका रिवर्स गियर सब यूनिक हो गए, जिससे फोर्ड कार बन गई। उसने अपने सक्सेस मंत्रा में लिखा थिंकिंग एंड बिलीफ, थिंकिंग एंड बिलीफ, ये दोनों मिल जाए वो व्यक्ति लाइफ में मैरेकल कर देता है। थिंकिंग, सोचा और फेथ किया। उसने कहा मैं रोज सोचता था, मेरी पत्नी बिलीव करती थी। इट वॉज ए रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ ए हस्बैंड एंड वाइफ, एक सोच रहा है दूसरा कह रहा है कर, ज्यादातर तो क्या होता है टांग खींच लेते हैं, पर ये रेयर कॉम्बिनेशन है। पर हमें दोनों कैपेसिटी है, सोचो और फेथ रखो, आप देखोगे आप कुछ भी दुनिया में कर सकते हैं। ये दोनों चीजें अंदर हमने डेवलप कर ली। इनिशियल स्टेज में स्ट्रेस हमारा परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, पर वो क्रोनिक लेवल पे जब चली जाती तो हमारे को डैमेज करना चालू करती है। अगर कंटिन्यूसली हम हर सिचुएशन को स्ट्रेस के रूप में ले रहे हैं, वो हमारे को नुकसान करती है। अब हर एक का डेवलपमेंट अलग अलग रहता है बच्चे का, उसके अनुसार वो फेस करता है। पहला डेवलपमेंट बच्चे का चालू होता है जब कभी भी वो रोता है, क्राई करता है तो माँ उसको फीड करती है, तो उसकी पर्सनैलिटी में क्या जाता है, क्राइंग मींस फीडिंग। इफ आई वांट टू गेट समथिंग आई हैव टू क्राई, आई हैव टू डू समथिंग। वही पर्सनैलिटी बड़े होने पर भी हो जाती है। अब उसको अगर फीडिंग नहीं मिलती है तो उसमें प्रॉब्लम चालू होती है और तरह तरह के रूट अपना लेता है। कई बच्चे एस्केप करते हैं, कई रिप्रेस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, खुद को मारते हैं और अटैक करते हैं। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बचपन से हुआ और इसी के कारण ज्यादातर हम दो में घुस जाते हैं, या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। बहुत गर्दन ऊपर, सुपीरियरिटी है ना, उसकी गर्दन हमेशा ही ऊपर है, गुड मॉर्निंग, कुछ नहीं, सीधा जा रहा है, कौन है। और इन्फीरिटी वाले की गर्दन कैसी होगी, सेल्फ डिफेंसिव, किसी से बात नहीं, ये एग्रेसिव, ये सेल्फ डिफेंस। इसलिए भगवान के सामने जब ये जाता है ये वाला और ये वाला, तो भगवान भी सोचता है, एक ऊपर देख रहा है एक नीचे देख रहा है, आखिर इनको चाहिए क्या। तो इसीलिए आजकल प्रेयर भी रिजेक्ट होती और इसीलिए ये आर्थराइटिस प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रहा है। गर्दन तो नहीं हुई हम यू, तो गर्दन हमारी तो नॉर्मल ऐसी होना चाहिए, नेचुरल, आंख से आंख मिलाकर बात कर सकूं। इसीलिए पहले के मंदिर के दरवाजे छोटे बनाए गए। वैष्णो देवी जाओ तो आपको कैसे जाना पड़ेगा, अब वहां ऐसी गर्दन करके गए तो क्या होगा। तो इसीलिए वहां झुकना पड़ता है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। भगवान को जूते का वो नहीं है प्रॉब्लम, भगवान को यहाँ का प्रॉब्लम है कि पहले अपना ईगो छोड़ के मेरे से बात कर, तो तब मैं तेरी प्रेयर को रिस्पॉन्स करूंगा। नहीं तो आजकल बाहर से हेलो गॉड हाउ आर यू, टाइम नहीं है मेरे को, मैं तो अपने टाइम में जा। तो थोड़ा टाइम इसलिए बनाया गया कि व्यक्ति चलेगा, मंदिर जाएगा, नीचे झुकेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी होगी। और जो व्यक्ति में जितना इन्फिरिटी रहता है उतना उसके अंदर कमजोरी आ जाती है। वो एक कदम उठाएगा, करूं, अंदर से आवाज आएगी सबकॉन्शियस से, कहां कर रहा है, तेरे में ताकत ही नहीं थी। इसको कहते हैं ससेप्टिबल टू नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। किसी ने उसको कह दिया चेहरा पीला पड़ गया है, हाँ कुछ है मेरे को, डॉक्टर के पास चला जाएगा, क्योंकि ससेप्टिबल है, सेंसिटिव नेचर है। इसमें हमें टफ रहना पड़ता है। एक लेडी अभी रिसेंटली मिली थी, बहुत हाई प्रोफाइल लेडी, सब अच्छा, सैलरी अच्छी, सब अच्छा। एक दिन आई, सडनली डिप्रेशन हो गया, सडनली डिप्रेशन हो गया। तो पूछा क्या हुआ, सब ठीक है? कहती है मैंने एक बहुत महंगी रिंग खरीदी थी, बहुत महंगी, मेबी $1000, और वो पहन के पार्टी में गई थी, और पार्टी में बार बार दिखा रही थी रिंग। जैसे मैंने अगर वॉच अच्छी पहनी तो मैं जाऊंगा दिखाऊंगा बार बार, तो लोगों का अटेंशन हो। कहती मैं पार्टी में गई, किसी ने कुछ मेरी रिंग के बारे में नहीं बोला, मेरे को डिप्रेशन आ गया। अगर किसी ने उसको बोल दिया होता बहुत अच्छी है, कहां से खरीदी, तो वो नॉर्मल हो जाती। पर क्या हुआ, शी वॉज डिपेंडेंट ऑन अप्रूवल ऑफ अदर्स। इसको कहते हैं अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर। और सबसे ज्यादा व्यक्ति मार दुनिया में वही खाता है जो दूसरों से अप्रूवल की कोशिश। लाइफ में जीना है तो आपको अपना अप्रूवल खुद को रखना पड़ेगा, नहीं तो वो गधे जैसी हालत हो जाएगी। माँ बाप जा रहे हैं, बच्चा और लड़का गधे को लेके, लोग कह रहे हैं अरे क्या गधे पे गधा चल रहा है, दोनों पैदल जा रहे हैं, फादर बैठ गया गधे पर। आगे गए लोगों ने कहा कैसा फादर है, बच्चा पैदल चल रहा, खुद बैठ गया, बच्चे को बिठा दिया गधे पे। आगे गए लोग कैसा लड़का है, फादर पैदल जा रहा और ये खुद बैठ गया, दोनों बैठ गए गधे पे। लोगों ने कहा कैसे हैं माता पिता, दोनों ही बैठ गए और गधा बेचारा दबा हुआ है, गधा उन्होंने सिर पे लेके चलने लगा। यही होता है जब हम सेंसिटिव हो जाते हैं, ससेप्टिबल हो जाते हैं। ससेप्टिबल वाला ही मैच हारता है, हमें उसको हटाना। एक और साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है जो मैंने कहा लास्ट में आता है, ये मास्लो का प्रिंसिपल था। इब्राहिम मास्लो एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने ह्यूमन बिहेवियर का नेचर बताया कि अल्टीमेटली व्यक्ति को क्या चाहिए साइकोलॉजिकली। तो सबसे पहला उसने बताया हर व्यक्ति को सिक्योरिटी चाहिए, सुरक्षा, गवर्नमेंट जॉब, अच्छा गवर्नमेंट जॉब नहीं, इनसिक्योरिटी, कई लोग बीमार हो जाते इनसिक्योरिटी के कारण। दूसरा चाहिए एक्सप्रेशन, हर व्यक्ति को क्या चाहिए, मैं बोलूं, बात करूं, अपनी बात को फील करूं, एक्सप्रेशन। इसीलिए उन्होंने देखा एक स्टडी में जो लोग कुत्ते लेकर घूमते हैं उनको हार्ट की डिजीज कम पाई गई। तो उन्होंने कहा क्या बात है, देखा तो उन्होंने देखा ये कुत्तों से बड़ी अच्छी तरह बात करते हैं, हाउ आर यू डॉगी, एवरीथिंग ओके। कुत्ते को कुछ बोलो कुत्ता जवाब नहीं देता, आदमी को बोलो तो काटता है। तो इसीलिए आजकल हार्ट डिजीज में हम लोग कहते हैं डॉग्स को पाल लो, हार्ट डिजीज वाला बेचारा अकेला रहता उसको कहते हैं पाल, बात तो कर, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। तीसरा है रिकॉग्नाइज सोशल स्टेटस, एडवेंचर। तीसरी चीज चाहिए उसको एडवेंचर, नई चीजें करना, रोज कुछ नई चीज करना। आपने देखा ना वो व्यक्ति चंद्रमा पर गया टूरिस्ट, कितने करोड़ रुपए दिए उसने, 15 करोड़ दिए। लोगों ने पूछा आप पागल हो गए, 15 करोड़ दिए? अपन लोग सोचते हैं इंडिया में अरे क्या पागल है, 15 करोड़ खाली एक हफ्ता रह के आ गया, मैं तो रख लेता उसको लॉकर्स में और लाइफ टाइम एंजॉय करता। एडवेंचर, हर व्यक्ति को कुछ इच्छा होती है कुछ नया करूं। और इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है, डू समथिंग डिफरेंट एवरी डे, एंजॉय दैट वर्क यू वॉन्ट। वर्क किसी को मारता नहीं है, वर्क डोंट किल द पीपल। क्या मारता है, इट इज परसेप्शन टूवर्ड्स द वर्क किल द पीपल। अब्दुल कलाम जी ने कहा मैं 18 घंटे काम करता हूं, सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, चाय बनाता हूँ, काम करता हूँ. वर्क डोंट किल द पीपल, इट इज अवर परसेप्शन. इसलिए काम को भी क्या करो, एंजॉय करो. काम को जितना हम एंजॉय करेंगे उतना लीडरशिप आएगी, और जो व्यक्ति छोटे से काम को भी बढ़िया कर देता है वही लीडर बनता है. चाहे वो हिल्टन था, वॉल्ट डिज्नी था, छोटा काम उन्होंने किया पर इतना परफेक्ट किया, अच्छा किया. लीडर्स आर नॉट, दे डू ग्रेट थिंग्स, दे डू स्मॉल थिंग्स ग्रेटली. छोटी चीज को अच्छी तरह वो करते हैं, परफेक्ट करते हैं. यहां भी आप देखेंगे कोई स्किल सीख के नहीं आए, तो सबने सीखते सीखते छोटी छोटी को वही आज मास्टर बन गए, अच्छे कुक बन गए, जबकि वो स्किल्स नहीं थी. पर उसको एंजॉय करना सिखाया यहां मैनेजमेंट में, एंजॉय करो. तो जो व्यक्ति एंजॉय करता है वो एडवेंचर रोज करता है, वही नई डिश बना पाएगा. चेफ कौन फेमस हो जाता है, डिजाइनर कौन फेमस हो जाता है, जो रोज नया मार्केट में लाता है तो वो फेमस हो जाता है. और नेक्स्ट नीड है जहां व्यक्ति अटक जाता है, वही मैंने कहा अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर. आज हमें इसको काटना पड़ेगा तभी हम आगे जा सकते. यहां आके व्यक्ति ज्यादातर अटक जाता है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी है चाहे अदर है. मेजर फेल्यूअर यहां आके होता है, इसको हमें क्रॉस करना पड़ता है तब हम ऊपर जाते हैं. अब ये देखिए फ्रस्ट्रेशन, टिपिकल रिस्पॉन्स, नेगेटिव रिस्पॉन्स टू सिचुएशन. अब इससे क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल वो है स्पाइनल कॉर्ड, ये नॉर्मल खड़ा है, गर्दन बैक. अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे मैं टाइप ए पर्सनैलिटी हो गई, बहुत जल्दी कर रहा हूं, वन डे मैच खेल रहा हूं, चेंज आने लगा स्पाइनल कॉर्ड में. इसलिए मैंने कहा ऑस्टियोआर्थराइटिस, आर्थराइटिक प्रॉब्लम, बैक पेन हमारे फिजिकल पोस्चर और रिएक्टिव पोस्चर से होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, चेंज आने लगा. ओवर डिफेंस पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को पूरी सिक्योरिटी देना चाहते हैं उनमें भी चेंजेस आना चालू हो जाते हैं. पूना में गया, वो फादर ने बताया मैं उस चौराहे तक जाता हूं जब तक मेरी लड़की स्कूटी, उसको स्कूटर खरीद के दिया, जब तक वो चौराहे तक क्रॉस नहीं कर लेती मेरा स्ट्रेस रहता है, मैं कार में उसके पीछे पीछे जाता हूं, जैसे ही क्रॉस कर लिया फिर घर आता हूं. 3 साल के बाद जब उसको सिम्टम्स चालू हुए तो डॉक्टरों ने कहा वो लड़की जा सकती है, आप चिंता मत करो, खुद ही क्रॉस करेगी. और वो जाने भी लगी और फिर धीरे धीरे उसके स्ट्रेस सिम्टम्स कम होने लगे. इसको कहते हैं ओवर डिफेंस नेचर. मैंने मोबाइल ले लिया, बच्चे को भी मोबाइल ले दिया, हर 3 घंटे में मोबाइल पे इंस्ट्रक्शन जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति का पर्सनैलिटी क्या होगा, सोच खत्म हो जाए और ये डिजनरेटिव चेंजेस आ गए, परमानेंट प्रॉब्लम चालू, और ये कॉमन हो रहा है. तो अल्टीमेटली हमें एम्पावर्ड बनना है, अपने को शक्तिशाली बनाना. और इसका सबसे बेस्ट मॉडल है हमारा विष्णु, गॉड विष्णु. इनके 4 हथियार दिखाए और यही 4 हथियार अपने को इनवाइट, शंख ब्लोइंग. शंख कौन बजा सकता है, जिसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी है. एक्सेल एक्सप्रेशन, गदा कमांड एंड कंट्रोल ओवर द सेल्फ. चक्र स्पिनिंग, नेगेटिव थॉट आए कैसे आप अपने नेगेटिव बिहेवियर को चेंज करते हो, बाय चर्निंग पॉजिटिव थॉट्स. चौथा लोटस, कीचड़ में भी है फिर भी फूल है, साइन ऑफ डिटैचमेंट. ये स्पिरिचुअलिटी के 4 हथियार हैं, वो हमें धीरे धीरे इनवाइट करते हैं तो हम हर सिचुएशन को अपने अनुसार टर्न कर लेते. इसका प्रिंसिपल बेसिक है काइजान का, जापानीज मैनेजमेंट. कैसे हम रोज एक छोटा छोटा परिवर्तन लाएंगे तो एक बड़ा परिवर्तन ले आएंगे. बहुत बड़ा परिवर्तन न लाके छोटे छोटे चेंजेस लाएंगे तो बड़े चेंजेस आ जाएंगे. दीज आर इमोशनल साइकोलॉजिकल मेथड्स, कैसे आप अपने को रिलैक्स कर सकते हैं उस समय जब टेंशन आ रहा है, जो उसमें भी बताया मूवी में, उस समय कैसे डिस्ट्रैक्ट कर दो, अपने को रिलैक्स कर दो और रिलीज करो. ये अलग अलग मेथड्स हैं. कई लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाते हैं, आप जब गुस्सा आए, इमोट टेंशन आए, सांस लेने लग जाओ. पर्टिकुलरली आप बॉस गुस्सा कर रहा है, आपको हस्बैंड गुस्सा कर रहा है, तो लेडीज क्या करें, साइड में चले जाएं, ब्रीदिंग आउट करें, फिर से आ जाएं, पर बार उसको बताएं नहीं, नहीं तो उसको और गुस्सा आएगा। तो ब्रीद आउट, और इसलिए कई मेडिटेशन ब्रीदिंग पे हैं। आप जितना सांस छोड़ेंगे उतना डर कम होगा। एग्जामिनेशन में भी जा रहे हो, पहले ब्रीद आउट करो, पेपर चालू। फोन पे भी आजकल टॉप बॉसेस को सिखाया जा रहा है, जब फोन की घंटी बजे एकदम नहीं उठा लो, ब्रीद आउट करो, रिलैक्स हो, फिर आंसर दो, नहीं तो गुस्सा आएगा। पहला ही गलती, उसने किसी ने गलत नंबर दिया, सुना दिया उसको। ब्रीद आउट, हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आप रिलैक्स, क्योंकि रिलैक्सेशन इज ए कुशन। इसलिए आजकल आप देखते हैं बड़े शहरों में ट्रैफिक सिग्नल्स पे पहले लिखा रहता था स्टॉप, आजकल क्या लिखा रहता था, रिलैक्स। नहीं तो रेड लाइट पे लोग झगड़ते थे, सबसे ज्यादा टेंशन रेड लाइट पे होता है। अब उन्होंने लिख दिया रिलैक्स, मेरे से झगड़ा नहीं करो, मैं तो रेड लाइट हूं। रिलैक्स किसको करना है, वो एक मिनट भगवान ने दिया है, ब्रीद आउट करो, इजी हो जाओ, फिर ड्राइव करो। ज्यादा एक्सीडेंट इसी से होते हैं कि व्यक्ति घर से निकला, गुस्सा होके निकला, कहीं ना कहीं उसकी मेमोरीज चल रही हैं और एक्सीडेंट हुआ। इसलिए घर से भी निकलो तो रिलैक्स होकर निकलो। मैं मेन पॉइंट पे आ जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें करो जो एंजॉय करते हो। मिस्टर पुटिन, रशियन प्रेसिडेंट, जहां जाता है कुछ ना कुछ वो कंफू कराटे खेलता है और पॉटरी बनाता है। लोगों ने पूछा, सर दिस हाउ यू आर गेटिंग हैप्पीनेस फ्रॉम दिस, आप तो प्रेसिडेंट हैं, इतने बड़े हैं। बोला, प्रेसिडेंटशिप में इतना मजा नहीं जितना इसमें मजा आता है। हर व्यक्ति को, आज आपने देखा मिस्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा, आई यूज टू एंजॉय व्हेन आई वाज अ प्रोफेसर। मेरा भी एक डॉक्टर फ्रेंड है, मेडिकल कॉलेज से रिजाइन किया, अभी प्राइवेट प्रैक्टिस में आ गया, प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हुई, पर बेचारे को बड़ा टेंशन था, मैं जब प्रोफेसर था बड़ा मजा था, पैसे कम थे, बट आई यूज टू एंजॉय टीचिंग। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, चाहे हम प्रेसिडेंट हो जाए, प्राइम मिनिस्टर हो जाए, वो चीज जरूर करो जो आपको खुशी देती है। पेड़ों के पास जाओ, गाने की इच्छा हो रही है गीत गाओ, हंसने की इच्छा हो रही है हंसो, सबके सामने नहीं गा सकते बाथरूम में जाओ, गाने लग जाओ अच्छी तरह से, तो क्या होगा, आप इंजॉय करेंगे। देखो एक अच्छा गीत बजाइए, अभी काफी टाइम हो गया, रिलैक्स करें अपने को एक सेकंड। जिंदगी पे आप गीत को एंजॉय करना, जो भी यहाँ हम गीत बजा रहे हैं उसका अर्थ है उसको एंजॉय करना। मेरे में एनर्जी है, दोनों पांव ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। आप करिए, खड़े हो जाइए, करिए, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। हाँ हाँ करिए, दोनों, वेरी गुड, गर्दन को ढीला, छोड़ दो, छोड़ रहा हूँ। प्यारी का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी प्यारी का गीत है, हर दिल को गाना पड़ेगा, जिंदगी हम का सागर भी है, इस पार जाना पड़ेगा। चलो तो थैंक यू, बस नेक्स्ट 5 मिनट्स में खत्म कर। अब आ गए पहला प्रिंसिपल, एक्सेप्ट यूर सेल्फ। मैं जो हूं, जैसा हूं, नॉर्मल हूं, नेचुरल हूं। आजकल हम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखा रहे हैं, डोंट कॉल यूर सेल्फ आई एम ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार, आई एम वॉट आई एम। मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं, यहां प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, ठीक हूं। एक्सेप्ट यूर सेल्फ, इसी को कहते हैं लॉ, एक्सेप्ट एज सच। कोई आपसे पूछे कैसे हो, लव मीन्स नो जजमेंट, नो ब्लेम, no expectation, no attempts to control. Soul can grow only in freedom. And unconditional love can provide freedom. Har atma ko kya chahiye? Freedom chahiye. और लव ही उसको फ्रीडम दे सकता है। ये आत्मा के दो कैरेक्टर रहते हैं जिसको हर हर व्यक्ति को चाहिए, फ्रीडम एंड लव। आप अपने को दीजिए, इसीलिए एक व्यक्ति ने कहा यू वांट रिस्पेक्ट और फ्रीडम। फ्रीडम और रिस्पेक्ट एक साथ नहीं जा सकते। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए यू हैव टू लूज योर फ्रीडम। इसीलिए कई लोग वो जॉब करते हैं जिसमें उनको फ्रीडम मिलती। अभी लास्ट ईयर एक कलेक्टर ने रिजाइन किया। कलेक्टर से पूछा, सर व्हाई यू रिजाइन, यू आर ए आईएएस ऑफिसर। रिस्पेक्ट तो था बट आई वाज नॉट एंजॉयिंग, मेरी फ्रीडम खत्म हो गई। एंड इमीडिएटली विद इन वन वीक ही वाज हायर्ड बाय बिग कंपनी एंड ही इज गेटिंग सैलरी मोर देन हिज आईएएस ऑफिसर। फ्रीडम। इसीलिए चॉइस जब जिंदगी में आए, फ्रीडम चाहिए कि रिस्पेक्ट चाहिए, टेक फ्रीडम। आप मास्टर बन जाएंगे, आप उस काम को एंजॉय करेंगे। फ्रीडम नहीं चाहे, आपका टाइटल बहुत बड़ा है पर अंदर ही अंदर घुटन होती रहेगी। और आत्मा तभी चिल्लाती है जब उसको फ्रीडम नहीं मिलती। अनकंडीशनल लव ब्रिंग्स जॉय, कंडीशनल लव इज अटैचमेंट। प्यार करो पर न्यारा और प्यारा बनो। लव मीन्स शेयरिंग। लोग सोचते हैं लव का अर्थ क्या, शेयरिंग विथ एज मैनी एज पीपुल, सबसे, बर्ड से। बर्ड से भी बात करो, देखो नीचे से ऊपर आते हैं तो बंदर बैठे रहते हैं बीच में। अब आपको गुस्सा है ये बैठे क्यों हैं बीच में, मैं कहता हूं हमारे बंदर बड़े अच्छे हैं, वो पुलिस का काम करते हैं, स्पीड कम कर देंगे। देखो बाहर के देशों में आप गाय को नहीं देख सकते। मैं भी जब इस देश में 92 में आया तो मेरी वहां की फाइल, जब कभी भी गाड़ी में जाता था तो वहां हम लोग सोचते थे आधा घंटा पहुंच जाऊंगा वहां, क्योंकि ट्रैफिक सब सिस्टम से चलता है। अब इंडिया आया, देखा आधा घंटा में पहुंचने की है, रास्ते में बड़े प्रॉब्लम, साइकिल वाला, स्कूटर वाला, ये तीन लेन, गाय बैल सब। मेरे को बड़ा गुस्सा, लोगों में अकल नहीं है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। पुलिस का जहां वो लगा हुआ है बैरिगेट, वहां गाय खड़ी हुई है। मैं कहता था 3 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ, मेरी फाइल खुल रही है, मेरा ही एड्रिनल पंप काम कर रहा है बार बार, और वो तो मुस्करा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, गाय भी मुस्करा रही है, मैं तो ठीक हूं, तुझे टेंशन है। तो अब मैंने सोचा मुझे चेंज होना है, तो मैंने गीत सुना आई लव माय इंडिया, वो गीत डाल दिया इसमें। अब फिर बैठा, फिर वही हो रहा है, अब वो गीत बजने लगा। आह ब्यूटीफुल, हमारी गाय कितनी समझदार है, फ्रीडम है, पुलिस का काम कर रही है, रोक रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, गाय को भी हेलो करता हूँ, हाउ आर यू, काउ, एवरीथिंग ओके, बहुत अच्छे, वो जाने दो हमें जाना। गाय हट जाती है, गाय का भी ईगो रहता है ना, बीच में खड़ी हो जाती है, जाने दो हमें, हट जाती है। तो कोई आपसे पूछे कहिए आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके। चार तरह के लोग होते हैं ना, एक कहता है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, ये वाला। दूसरा वाला आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। तीसरा आई एम ओके, यू आर ओके, एवरीथिंग ओके। और चौथा मैं ठीक नहीं, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, नथिंग इज। वही लोग गड़बड़ करते हैं, वही क्राइम करते हैं, वही वायलेंस करते हैं, वही सब एंटी सोशल। तो कोई भी पूछे आपसे कैसे हो, सिर दर्द हो रहा है, ठीक हो, ठीक है, ठीक है। एक डॉक्टर ने और कहा कि अगर ये नहीं बोल सकते, बड़ा डिफिकल्ट लगता है, ये तो कह सकते हैं आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, बट दैट इज ओके। मैरिज में भी क्या है, इंजॉय। मैरिज भी क्या है, इंजॉय द डिफरेंसेस। नहीं तो लोग सोचते हैं मैरिज मीन्स टू आइडियल पर्सन आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। 99% तो ऐसा नहीं होता, 1% होता है। 99% हमें क्या करना है, एक दूसरे के डिफरेंसेस को एंजॉय करना है। सोक्रेट ने इसीलिए कहा इफ यू वांट हैप्पीनेस गेट मैरिड, इफ यू गेट अ गुड वाइफ यू विल बी हैप्पी, एंड इफ यू विल नॉट गेट गुड वाइफ यू विल बिकम सोक्रेट। तो रोज चार्ज करो, लास्ट मैनेजमेंट जी ओ डी, रोज सुबह अपने को चार्ज करिए, एक दिन का मैच आराम से प्ले रोज सुबह करिए। कहा जाता है जो व्यक्ति सुबह अपने को चार्ज करता है उसका दिन भी ठीक निकलता है। तो सुबह क्या करिए, जनरेटर, अपने कंप्यूटर को जनरेट करिए, एक्सरसाइज करिए पहले, अच्छी एक्सरसाइज जिससे कि आपकी हार्ट बीट क्या हो जाए। पहले मेरी 70 थी, 80 थी, अब मैंने क्या किया, कैपेसिटी इसको बढ़ा दी, रोज 120, 130 तक ले गया। तो अब क्या होगा, कोई सिचुएशन स्ट्रेसफुल आई, गाड़ी पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, हार्ट बीट 130 हुई, आई एम कंफर्टेबल, मैंने उसको ट्रेन कर दिया। ट्रेन ही नहीं किया तो वो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो जनरेट कर, फिर एक्सरसाइज के बाद बैठ जाओ शांत, एक्शन, फिर रिलैक्स, फिर अपने में चार्ज करो व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुडे। टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे, टुडे इज अ न्यू डे, टुडे इज अ गिफ्ट गिवन बाय द गॉड, लेट मी एंजॉय टुडे। आज के दिन मुझे क्या करना, जनरेट किया, पॉजिटिव निकला घर से, लोगों ने कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैं खुद दूसरों से कर रहा हूं। अगर चार्ज होके नहीं निकला, गुड मॉर्निंग सर, व्हाट इज देयर, गुड मॉर्निंग, चला गया अपने कमरे में। चार्ज होकर निकलो तो आपका चार्ज दूसरों को चार्ज करे, उसी को लीडर कहते हैं। लीडर वही है जो चार्ज खुद को करता है, दूसरों को भी करता है। हमारी दादी आती, लोग चार्ज हो जाते हैं, 5 मिनट आती है, लोग चार्ज हो जाते हैं। चार्ज, शेयरिंग ऑफ योर एनर्जी, दिन में ऑपरेट करिए, बार बार ब्रेक लगाइए, जब बेकार कुछ नहीं है, कहाँ जाना है, कितना जाना है, कितनी ब्रेक, यहाँ जरूरत नहीं है मेरी, नहीं जाओ, एंजॉय करो। और रात को डी, डिस्ट्रॉय, क्या डिस्ट्रॉय करना है, जो आज के दिन मेरे जिंदगी में कुछ काम की चीज नहीं हुई, फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम, किसी ने कुछ कहा, रात को उसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट, जाने दो, जाने दो। आज की चीज कल मत ले जाओ। हम सब इंडियंस क्या करते हैं, बहुत चीजें इकट्ठी करते जाते हैं, इकट्ठी करते जाते हैं, 5 साल तक भी याद रहता उसने क्या कहा था। रात को डिलीट कर दे, और लास्ट में सोने के पहले अपना हाथ ऊपर करिए, आप भी, हाँ हाथ करिए राइट हैंड, अपनी पीठ थपथपाइए, आह ब्यूटीफुल, यू आर यूनिक। हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, ये आप करोगे तो कभी भी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा। एप्रिशिएट योर ओन सेल्फ, एप्रिशिएट अदर्स, फिर आप किसी से मांगोगे नहीं मुझे एप्रिशिएट करो, आई कैन एप्रिशिएट, प्रेम तो मैंने अपने को किया। नहीं तो लोगों को डिप्रेशन का मेजर कारण क्या, किसी ने मुझका ही, मैं तो कर सकता हूँ, ये हाथ तो मेरे हाथ में है। इसीलिए हम लोग गले मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, जो व्यक्ति जितना गले मिलता है बच्चों से, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एनर्जी लेवल बढ़ती है। ये भी एक एनर्जी लेवल लेने का तरीका है, पांव, ये आशीर्वाद, आंख, ये सब एनर्जी देते हैं। तो जब लीडर का भी काम क्या होता है, वो एनर्जी दे किसी भी तरीके से। छोटे बच्चे ने गलती की, कोई बात नहीं, गले मिल ले उससे, कोई बात नहीं, खत्म बात वही। तो नहीं तो उस बच्चे को कितना टेंशन हो जाता है। तो डी मीन्स डिलीट। तो अपने में लिख दीजिए, मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं, मेरी जिंदगी सब ठीक रीति से काम कर रही है। एक लास्ट स्टोरी से खत्म करते हैं। आजकल कहा जाता है, स्ट्रेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स द सिचुएशन इज इम्पॉर्टेंट। योर एटीट्यूड डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। आप जिंदगी में कहां जाना चाहते हो, आपके एटीट्यूड के ऊपर है। एटीट्यूड का अर्थ होता है दृष्टिकोण। तो आपको एक स्टोरी दिखा के सुना के खत्म करते हैं, एटीट्यूड का अर्थ क्या है। एक व्यक्ति बहुत अमीर था, उसका एक बच्चा था। इस अमीर व्यक्ति ने सोचा, इसको मैं एक गरीब के यहां भेजूं और तब इसको पता लगेगा गरीबी क्या होती है। तो एक रात उसने अपने लड़के को एक गरीब की झोपड़ी में भेजा कि जा देख गरीबी क्या होती है। लड़का दिन भर रहा अमीर आदमी वो उस व्यक्ति के पास झोपड़ी में। सुबह आया तो व्यक्ति ने पूछा, तेरे को अब पता लग गया होगा गरीबी क्या होती है। तो वो बच्चे ने कहा, हाँ डैडी, हमारे घर में तो स्विमिंग पूल इतना बड़ा है, उनके गांव में तो इतनी बड़ी नदी थी, हमारे पास 2 कुत्ते हैं फॉरेन के, उनके गांव में तो 12-15 कुत्ते घूम रहे थे, हमारे घर में तो 2 इम्पोर्टेड लाइट हैं। और जब मैं सोया आकाश में देखा चंद्रमा तारे बड़े बड़ी लाइटें जल रही थी, आज मुझे पता लगा मैं कितना गरीब हूँ। एटीट्यूड डिटरमाइन यूर एल्टीट्यूड। तो अभी हम फिर रिलैक्स करेंगे, एक गीत बजाएंगे, सब कुछ सौंप दो। तो ये 3 मिनट हम सब सौंप देंगे, भूल जाएंगे कि हम कुछ हैं। मैं एक केवल चमकता हुआ एक्टर हूं, इस बॉडी को यूज कर रहा हूं। बस सब टाइटल भूल जाएं, लेबल भूल जाएं, घर को भूलें, अपनी चिंताएं उसको रात को देकर मैं सोने जा रहा हूं। सब तरफ से ध्यान हटाकर पांव को खुला रखें, हाथों में कुछ भी ना पकड़ें। ब्रीद इन एंड आउट 3 टाइम्स, सांस अंदर और बाहर, ब्रीद इन एंड आउट। Relax all your muscles, both limbs, abdomen, chest, neck muscles, sab relax kar do. Visualize karo ki pura sharir relax. Ab main apni energy ko, कॉन्शियसनेस को 2 आंखों के बीच फोकस कर रहा हूं। आई एम पॉइंट ऑफ लाइट विथ फुल ऑफ एनर्जी, बॉडी इज माई ड्रेस। नाउ रिलीज ऑल नेगेटिव इमोशंस, वरीज टू द गॉड। मैं सब कुछ सोपते जा रहा हूं परमात्मा को। रिलैक्स, सोपते जाइए, रिलीज करते जाइए, लेट गो करिए। अब विजुलाइज करिए इसी एनर्जी को शरीर के सभी ऑर्गन्स में जाने दें। अलाउ एनर्जी टू फ्लो नेचुरली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड स्टार्ट फील। हार्ट इज नॉर्मल, कोरोनरीज आर ओपन, ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, ब्लड शुगर इज नॉर्मल, शरीर के सभी सेल्स नॉर्मल काम कर रहे हैं, आई एम हेल्दी। वापस कॉन्शियसनेस को दो आंखों के बीच लाइए और अनुभव करिए कि जीवन के हर कार्य में परमात्मा मुझे मदद कर रहा है। एक कदम मेरा, हजार कदम परमात्मा के। हर सिचुएशन में मैं एक कदम उमंग उत्साह का ले रहा हूं, परमात्मा मुझे मदद कर।
शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है।
वापस नॉर्मल हो जाइए, कॉन्शियसनेस में आ जाए, ब्रीद इन एंड आउट करें। थैंक यू वेरी मच। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड पे एक जोक सुनाकर वापस आपका डायफ्राम लेवल बढ़ाते हैं, जिससे आप खाना अच्छी तरह खा सकें। एक व्यक्ति की वाइफ का जन्मदिन था, उसका हस्बैंड जन्मदिन भूल गया। तो जब घर आया तो उसकी वाइफ बड़ी नाराज हुई, आपको क्या मेरा बर्थडे भी याद नहीं रहता है? तो हस्बैंड ने कहा, देखो आज तक मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारी एक उम्र एक साल और बढ़ गई, तुम अभी भी यंग दिखती हो, इसलिए मैं जन्मदिन की मुबारक देकर एक साल तेरा बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए हर सिचुएशन में आप कैसे पॉजिटिव रहते हैं, वो हमें यहाँ से मैसेज को लेके जाना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल।